हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो इस अध्याय का ही शीर्षक है रामलीला। तो पिछले श्लोकों में आपने सुना होगा कि किस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र पहले रावण की बहुत कटु शब्दों में भर्त्सना करते हैं। जिस प्रकार से हर कोई युद्ध में योद्धा क्या करता है, अपने प्रतिपक्ष में जो भी शत्रु होता है उसको प्रोत्साहित करता है एक प्रकार से गाली देकर। सामान्य आम रूप से अगर गली में कोई झगड़ा होता है तो एक दूसरे को गाली देते हैं, है ना। और जितनी गालियां पड़ती है एक दूसरे को उतना झगड़ा करने का मजा आता है उनको। परंतु ये भी एक प्रकार से झगड़ा ही है। एक अधर्म के लिए झगड़ा कर रहा है, दूसरा भगवान श्री रामचंद्र धर्म के लिए। तो इस युद्ध में भगवान श्री रामचंद्र रावण को कई प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और यहां तक कहते हैं कि तुम एक प्रकार से कुत्ते की भांति हो, श्वान की भांति, जो अपने मालिक के अनुपस्थित होने पर उसके घर से रोटी चुरा कर तुम भाग रहे हो और उसी प्रकार से तुमने मेरी पत्नी को मेरे अनुपस्थिति पर चुराया है। पर रावण की इस कृत्य को देखकर कई सारे लोगों ने उस पर लांछन लगाए, उसकी भर्त्सना की, उसकी निंदा की। हालांकि उसके पास इतनी महान महान शक्तियां थी और इस शक्ति के द्वारा वो युद्ध करके कई सारे लोगों को, कई सारे राजाओं को उसने पराजित किया था। अपने बाहुबल पर उसने कई सारी कन्याओं का हरण किया था। परंतु यहां पर भगवान की अनुपस्थिति पर या किसी एक योद्धा की अनुपस्थिति पर माता सीता का हरण क्यों किया? और इस प्रकार से जब वो हरण भी करता है तो इससे पहले भी कहा जाता है, अभी ये जो प्रसंग चल रहा है कि रावण की हत्या हो जाती, वध हो जाता है भगवान श्री रामचंद्र के द्वारा, और उसके पश्चात रावण की रानियों ने कभी भी नंगे पैर या पैरों में कोई उनके जो वाहन जो होता है, जूते चप्पल इत्यादि, वो कुछ नहीं थे। ऐसे नंगे पैर वे अपने महलों से बाहर निकलती हैं और युद्ध भूमि की ओर पलायन मतलब प्रस्थान करती हैं। यहां पर ऐसा प्रसंग बताया जाता है कि उन रानियों ने कभी भी जमीन पर इस प्रकार से पैर नहीं रखा था, क्योंकि रावण ने उनका इतना ख्याल रखा था। और जब मंदोदरी के साथ साथ सभी रानियां महल से बाहर आती हैं और अपने अपने जो भी अन्य योद्धाओं की पत्नियां थी वो भी वहां पर आती है और हर कोई अपने पति को ढूंढती है वहां पर, क्योंकि तो लाखों करोड़ों की तादाद में वहां पर शव बिछे हुए थे। किसी का सर कटा हुआ है, किसी के हाथ पर कटे हुए हैं और कोई ज्वालाग्रही अस्त्र शस्त्र के द्वारा पूरी तरह से भस्म हो चुका है। तो न जाने किस प्रकार से किसकी मृत्यु हुई हो ये बताना बहुत कठिन है। फिर भी अपने अपने पतियों को सारी स्त्रियां वहां पर ढूंढ रही हैं और मंदोदरी और सारी उसकी जो सौतन जो थी रावण के पास आकर वहां पर बहुत ही विलाप करने लगती है। वास्तव में यहां पर जो इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार से मंदोदरी रावण को उद्देशित करते हुए यहां पर अपना शोक प्रकट करती है। तो मंदोदरी रावण के मृत शरीर के पास बैठकर इस प्रकार से विलाप करती है कि हे नाथ, हे स्वामी, तुम अन्यों की मुसीबत की मूर्ति प्रतिमूर्ति थे, अतएव तुम रावण कहलाते थे। किंतु अब जब तुम पराजित हो चुके हो, हम भी पराजित हैं, क्योंकि तुम्हारे बिना इस लंका के राज्य को शत्रु ने जीत लिया है। बताओ ना, अब लंका किसके शरण में जाएगी? तो यहां पर केवल शुरुआत हो रही है कि किस प्रकार से वे विलाप करती है, परंतु श्रीमद् रामायण में इसकी बहुत ही विस्तारित रूप से चर्चा वाल्मीकि जी ने की है। कई बार मंदोदरी रावण को उल्हाना देती है, भर्त्सना करती है, क्यों तुम्हारी इस प्रकार से दशा हुई? पर एक पत्नी होने के नाते या स्त्री होने के नाते वो रावण को शक्तिशाली अपराजित जगत जेता इस प्रकार से संबोधित करते उसका गुणगान भी करती है और कई स्थान पर इस प्रकार से विलाप करती है कि तुम तुम्हारे कारण आज जो गति हुई है हमारी शायद और किसी के ना हो। तो मैं यहां पर पूरे श्लोकों पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं है, परंतु जो भी श्लोक यहां पर दिए गए हैं तो ये युद्ध कांड है और अध्याय 111 मंदोदरी का विलाप तथा रावण के शव का दाह संस्कार, तो ये अध्याय आता है। तो रावण को अलग अलग प्रकार से जब वो विलाप सुनाती है या फिर बोलती है तो यहां कहती है सत्वम मानुष मात्रेन रामेण युधि निर्जितः न व्यपपत्र से राजन किमिदम राजेश्वर राक्षसेश्वर। वे कहती कि वही आप आज युद्ध में एक मानव मात्र से परास्त हो गए हैं, राजन क्या आपको इससे लज्जा नहीं आती है? राक्षसेश्वर बोलिए तो सही यह क्या बात है। तो राक्षस राज रावण के सामने कोई इस प्रकार से बोल नहीं सकता था, अगर रावण जिंदा होता तो शायद बंदोदरी जिंदा नहीं बचती है, क्योंकि उसके राज दरबार में कोई ऊंचे स्वर में बोले और कटु शब्द भी बोले ये संभव नहीं था। लेकिन आज जो उसकी दशा हुई है भगवान श्री रामचंद्र के कारण या माता सीता के कारण, तो जब व्यक्ति घर में भी आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति के कारण घर में संकट आता है या दुख आता है तो लोग उसको भी सांत्वना देते और डांटते भी हैं। मंदोदरी यहां पर रावण को डांट भी रही है और अपना दुख भी प्रकट कर रही है, क्योंकि रावण को ब्रह्मा जी के द्वारा कई प्रकार के वरदान प्राप्त है, जिस प्रकार से हिरण्यकशिपु को प्राप्त थे उसने भी ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और अमरत्व का वरदान प्राप्त करने की चेष्टा की थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपको इस प्रकार का वर प्रदान नहीं कर सकता क्योंकि मैं स्वयं अमर नहीं हूं, आप और कोई प्रकार के वरदान मांग लो। तो रावण ने भी हर प्रकार से मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए देवताओं से मृत्यु ना हो, राक्षस से या असुर से, गंधर्व चारण इत्यादि सभी प्रकार के जो भी लोकपाल है उनके द्वारा भी मेरी मृत्यु ना हो, लेकिन ऐसा कहती कि ब्रह्मा जी के प्रेरणा से या भगवान के प्रेरणा से सरस्वती की जीवा पर प्रकट हो जाती है या इस प्रकार से उसको भुलाया जाता है, माया में पड़ जाता है कि वो मनुष्य का और वानर का नाम नहीं लेता है। उसको अहंकार इस प्रकार से था कि मैं इन लोगों को जिस प्रकार से मच्छर को मारते हैं ना उस प्रकार से मार सकता हूं। रावण मनुष्य को और बंदरों को बहुत ही निम्न स्तर का प्राणी मानता था, इसलिए वरदान मांगते समय उसने इन दो प्रकार के प्राणियों का प्राणियों के द्वारा मृत्यु नहीं होनी चाहिए इस प्रकार से मांगा नहीं था, और आज इन्हीं दो प्राणियों के द्वारा अर्थात मनुष्य प्राणी और जो वानर जाति का प्राणी है उसके द्वारा उसकी मृत्यु हो गई थी। तो मंदोदरी यहां पर उलाहना देती कि आपका वह पौरुषत्व कहां गया, आप तो एक सामान्य मनुष्य के द्वारा मारे गए और एक सामान्य मनुष्य के द्वारा मारा जाना किसी व्यक्ति पर अर्थात यहां पर वे कहती है आपको लज्जा नहीं आती है तो लज्जा किस प्रकार से होनी चाहिए? अगर बराबर का या समानता वाला व्यक्ति के द्वारा अगर आप पराजित होते तो ठीक है, कोई अखाड़े का पहलवान एक छोटे नन्हे से बालक के द्वारा अगर पराजित हो जाए तो उसकी बहुत निंदा होती है। शायद उसी प्रकार से यहां पर ये समानता की बात यहां पर मंदोदरी माता कहती है कि आप एक सामान्य मनुष्य के द्वारा युद्ध में मारे गए, आपको लज्जा आनी चाहिए। आगे कहती कथम त्रैलोक्य माक्रम्य श्रीयां वीर्येन चान्वितम् अविशयम जघान त्वा मानुषो वन गोचर। तो यहां पर वास्तव में भगवान को वन गोचर कहते हैं। पहले इसमें मानुष्य मात्रेन रामेण, आपको अगर रामायण आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा कि मंदोदरी माता भगवान श्री रामचंद्र को पूर्ण पुरुषोत्तम मान देती है, इसलिए कई बार उसने रावण को सलाह दी थी कि आप सीता को लौटा दो, राम कोई सामान्य पुरुष नहीं, सामान्य व्यक्ति नहीं, लेकिन रावण कहते हैं अहंकारी व्यक्ति पर अज्ञान का पर्दा चढ़ जाता है, और जो जिस प्रकार से भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना, अव जानंती माम बुढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम परम भामो जानतो मम भूत महेश्वरम, कि जो लोग मूर्ख होते हैं अज्ञानी होते हैं वे भगवान को सामान्य मनुष्य समझते हैं। मंदोदरी जानबूझकर यहां पर रावण की भसना करने के लिए बोलते हैं कि आप जो समझते थे, राधा गोविंद भगवान की जय, आप तो राम को सामान्य मनुष्य समझते थे ना, तो देखो आज सामान्य मनुष्य के द्वारा आपकी हत्या हो गई है। आप हमेशा राम को सामान्य मनुष्य ही समझते थे। अगर आपकी दृष्टि से राम अगर सामान्य मनुष्य है तो आप तो सामान्य मनुष्य के द्वारा मारे गए हो। इस दृष्टिकोण से मंदोदरी रावण को उलाहना देती है। ऐसा नहीं कि जो दो श्लोकों में जो उसने कहा है कि मानुष मात्र न रामेण या वन गोचर, तो वन में भ्रमण करने वाला जिस प्रकार से सामान्य आदिवासी होते या फिर कोई व्यक्ति होता है शिकारी होता है, आपको लगता था मतलब रावण को उद्देशित करते हुए कहते कि आपको लगता है कि राम सामान्य मनुष्य है, वन में फिरने घूमने वाला फिरने वाला एक व्यक्ति है, तो देखो उसी के द्वारा आपकी हत्या हो गई है। तो त्वाम मानुषो वन गोचर, आपने तीनों लोकों को जीतकर अपने अपने को संपत्तिशाली और पराक्रमी बनाया था। आपके वेगों को सह लेना किसी के संभव में नहीं था, फिर आप जैसे वीर को एक वनवासी मनुष्य ने कैसे मार डाला। तो और एक बार बोलते कि आपको एक वनवासी मनुष्य ने, जब पंचवटी में रावण आता है उसने देखा कि एक दो सामान्य पुरुष यहां पर है और वन के वलकल उसने धारण किए हुए, तो रावण को लगा तो वनवासी है, ये तो मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। जब जब रावण को समझाया गया कि राम कोई सामान्य पुरुष नहीं है और सीता भी कोई सामान्य नहीं है, आप सीता को लौटा दो, हर बार रावण यही बोलता था कि ये तो सामान्य पशु है, सामान्य मनुष्य है, वन में रहने वाला वन में घूमने वाला, ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तो हर बार अपने शक्ति संपत्ति और ऐश्वर्य का घमंड दिखाकर सबको चुप करा देता था। परंतु आज वही मंदोदरी उनको याद दिला रही है, आप समझते थे कि मानुष्य मात्र न रामेण, कि राम सामान्य मनुष्य है ऐसा आपको लगता था, तो देखो उसी ने आपको मार दिया। आप समझते थे कि राम जो है वन में घूमने वाला एक सामान्य मनुष्य है, देखो वही वन गोचर व्यक्ति ने आपको मार दिया है। आगे कहती है मानुषाणाम विषय चरत काम रूपिण विनाश स्तव रामेण संयोगे नोपपद्यते, आप ऐसे दशा में आप ऐसे देश में विचरते थे जहां मनुष्य के पहुंच नहीं हो सकती थे। आप इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ थे, तो भी युद्ध में राम के हाथ से आपका विनाश हुआ यह संभव अथवा विश्वास के योग्य नहीं जान पड़ता। फिर से एक बार इस तीसरे श्लोक में वे कहती कि राम आप ऐसे देश में रहते हैं, कौन से देश में, लंका में, और इस लंका में कोई सामान्य मनुष्य सामान्य पशु प्रवेश नहीं कर सकता था, यहां तक कि देवता भी वहां पर घुस नहीं सकते थे। जिन देवताओं को रावण ने पराजित करके अपने वश में रखा हुआ था वे देवता भी वहां पर प्रवेश नहीं कर सकते थे, तो हम जैसे सामान्य मनुष्य की क्या बात। और मंदोदरी माता यहां पर कहती कि रावण देखो तुम ऐसे देश में रहते थे, ऐसे स्थान में रहते थे जहां पर देवताओं की बात छोड़ दो सामान्य मनुष्य भी प्रवेश नहीं कर सकते थे, और आज देखो वही सामान्य मनुष्य तुम्हारे देश में घुसकर तुमको मारा है, और इस बात को मैं देखकर समझकर सुनकर मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूं। अगर देखें ना, जब भगवान श्री रामचंद्र सेतु बंद पर थे और वहां पर तैयारियां चल रही थी कि सेतु निर्माण की, तब भी रावण को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सामान्य मनुष्य सामान्य बंदर क्या कर सकते हैं, और जब ब्रिज या सेतु तैयार हो गया और भगवान श्री रामचंद्र और उनकी पूरी सेना लंका में प्रवेश कर जाती है, तब तक उसको यही घमंड था कि इनको मैं अपनी भूमि पर ऐसे ही मार दूंगा। कई प्रकार के असुर एक प्रतिदिन वहां पर मारे जा रहे थे, एक से बढ़कर एक। रावण के पास इतने बड़े बड़े महारथी सेनाएं थे, जो एक सेनापति या एक योद्धा देवताओं को यूं चुटकी में परास्त कर सकता था। और ऐसे बड़े बड़े योद्धा बड़े बड़े महारथी से वानरों द्वारा मारे जा रहे थे। और जब इंद्रजीत की भी हत्या हो जाती है, तब कुंभकर्ण को भी भेजता है, कुंभकर्ण भी मारा जाता है, फिर भी उसका अहंकार, उसका घमंड चूर नहीं हो रहा था। उसको अभी भी लगता था कि जब मैं युद्ध भूमि में मैं स्वयं जाऊंगा, तब इन वानरों को, मनुष्य को यूं ही मार दूंगा। इसलिए आचार्य कहते कि अहंकार इतनी खतरनाक चीज है कि जब तक उसका फन या उसका सिर कुचला नहीं जाता, तब तक वो नष्ट नहीं होता है। यहां तक कि मृत्यु के बाद भी उसका अहंकार जीवित ही रहता है। ऐसा जीव जब तक भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में समर्पित नहीं होता है, और गुरु, देखो काल जो है वह ऐसे अहंकारी लोग की सारी संपत्ति, उसका धन, उसका ऐश्वर्य, उसके प्राण भी छीन लेता है, और उसको अहंकार सहित सूक्ष्म देह में उसको छोड़ देता है, जीवित छोड़ देता है। परंतु अगर ऐसा अहंकारी व्यक्ति अगर भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में समर्पित होता है, तो भगवान या गुरु अपने श्री चरणों को उसके मस्तिष्क पर रखकर उसको सारे दुर्गुणों से मुक्त कर देता है। और ऐसा विनम्र समर्पित शिष्य या जो कोई भक्त होता है, वो मृत्यु के पश्चात फिर से दुर्गुणों को लेकर जन्म ले लेता है, भगवान के धाम चला जाता है। तो रावण एक अहंकार का प्रतीक है, काम का प्रतीक है, और एक काम और अहंकार की सहजता से नहीं जाता है, जब तक इन्हें भगवान के चरणों में समर्पित नहीं करते तब तक। परंतु रावण कभी भगवान को शरणागत हुआ ही नहीं। जब विभीषण भगवान को शरणागत होते हैं, तो भगवान सहजता से उनको शरणागति प्रदान कर देते हैं और कहते हैं कि अगर रावण भी यहां पर आ जाता है, तो मैं सारे उसके अपराधों को क्षमा कर दूंगा। ये बड़ा बड़ी लंबी घटना है, मैं आपको बुरी नहीं सुनाऊंगा। परंतु भगवान यहां तक कहते हैं कि रावण मुझे समर्पित हो जाता है और कहता है कि हे राम, आज से मैं तुम्हारा हूं। तो आज तक उसने जितने भी उत्पात मचाए हैं, जितने भी जीवों को कष्ट पहुंचा है, सारे अपराधों को मैं क्षमा कर दूंगा। यहां तक सीता के प्रति जो भी अपराध किया है, उसे भी मैं क्षमा कर दूंगा। तो एक जीव जब शरणागति स्वीकार करता है, तो भगवान सारे अपराधों को नाश कर देते हैं। इसलिए भगवान भगवद्गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा सचित्। इसे गीता का सार जो है, मन मना भव मत भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मुझमें मन लगाओ और संपूर्ण रूप से मुझे शरणागत हो जाओ। इस प्रकार से मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। परंतु जीव ना भगवान का समर्पित भक्त होना चाहता है, ना सारी चीजों को छोड़ना चाहता है, और यही कमजोरी रावण की थी। मंदोदरी जान गई थी सीता कौन है, श्री राम कौन है, विभीषण जान गए थे, इसलिए अपने भाइयों को, सारी संपत्ति को, देश को छोड़कर भगवान के चरणों में आ गए थे। लेकिन जो जीव भगवान को समर्पित नहीं होता है, वह अपने ही अहंकार के द्वारा, यूं ही प्रकृति के द्वारा मारा जाता है। तो मंदोदरी यहां पर बार बार कह रही थी कि तुम जिसको मनुष्य समझते थे, वनगोचर समझते थे, और जिस देश में तुम रहते थे, जहां पर मनुष्य की छाया भी नहीं पड़ सकती थी, ऐसे मनुष्य तुम्हारे देश में घुसकर तुमको मारते हैं, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। तो आगे यहां पर कहती है, युद्ध के मुहाने पर सब ओर से विजय पाने वाले आपकी श्री राम के द्वारा जो पराजय हुई है, यह श्री राम का काम है। मुझे विश्वास नहीं होता है कि आपने युद्ध में कभी पराजित स्वीकार नहीं की है, पर एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा, राम के द्वारा आपने पराजय स्वीकार कर ली है और राम ने आप पर विजय प्राप्त कर ली है, मुझे इस पर भी विश्वास नहीं हो पा रहा है। और अब रावण को उद्देशित करते हुए वो कहती है, अभी पहले रावण की ओर से बोल रही थी, आप तो राम को सामान्य मनुष्य समझते थे, देखो उसने किस प्रकार से आपकी हत्या कर दी है, यहां तक कि आपके देश में घुसकर उसको आपको मारा है। अब वो कहती है कि किस प्रकार से राम जो है आप समझते थे कि एक सामान्य मनुष्य है, लेकिन मैं समझती हूं कि राम कौन है। तो मंदोदरी माता कहती कि अथवा राम रूपेण कृतांत स्वयमागत मायाम तब विनाशाय विधाया प्रतिकीर्तम अथवा साक्षात काल ही अतर्कित माया रचकर आपके विनाश के लिए श्री राम के रूप में यहां पर पहुंच गया पहुंचाया था। अगर आप किसी देवताओं के द्वारा पराजित नहीं हो सकते, यमराज को, कुबेर को, इंद्र को, सारे बड़े बड़े देवताओं को उसने पराजित कर दिया था, कोई अगर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा है तो यमराज या उसके यमदूत उसको लेकर जाते हैं, परंतु लंका में कोई देवता प्रवेश नहीं कर सकता था, तो रावण को मृत्यु कैसे आएगी। और अब मंदोदरी माता कहती है कि राम के रूप में काल साक्षात तुम्हारे लंका में घुस आया है, और ये जो राम जो है कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, साक्षात काल का स्वरूप है। अथवा वासवेन त्वं दर्शितो असि महाबल वासवस्य तु काम शक्तित्वा द्रष्टुमपि संयोगे महाबलम महावीर्यम देव शत्रु महोजसम महाबली वीर। अथवा यह भी संभव है कि साक्षात इंद्र ने आप पर आक्रमण किया हो, परंतु इंद्र की क्या इतनी शक्ति है जो युद्ध में आपकी ओर आंख उठाकर भी देख सके, क्योंकि आप महाबली महापराक्रमी और महातेजस्वी देव शत्रु थे। युद्ध करना दूर की बात है, सामने खड़ा होने की शक्ति भी देवताओं में नहीं थी, और देवराज इंद्र जो देवताओं के राजा है वे भी रावण के सामने खड़े नहीं हो पाते थे। और मंदोदरी माता कहती कि अगर रावण, देखो इंद्र ने तुम पर अगर चढ़ाई की है, तुम्हारे इस देश पर आक्रमण किया है, तुमको मारने की चेष्टा की है, लेकिन मैंने जहां तक सुना है देखा है तो इंद्र तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता, तो फिर किसका कार्य है, क्योंकि इसके पहले के श्लोक में कहा था कि साक्षात काल ही राम के रूप में प्रकट हुआ है, और आप कहते कि इंद्र अन्य देवता भी तुम पर आक्रमण नहीं कर सकते, तुम्हारे सामने खड़े होने की शक्ति ताकत इनके पास नहीं है। फिर आगे बहुत सुंदर ये चार श्लोक हैं। व्यक्तमेष महायोगे परमात्मा सनातन अनादि मध्य निधनो महत परमो महान तमस परमोद्धाता शंख चक्र गदाधर श्रीवत्स वक्षा नित्य श्रीरज्जया शाश्वत ध्रुवम मानुषम रूप मास्ताय विष्णु सत्य पराक्रम सर्वे परिवृत्तो दैवैर्वान् रत्वा मुपागते सर्वलोकेश्वर श्रीमन लोकानाम हित काम्या स राक्षस परिवारम देव शत्रु भयावहम। तो इन चार श्लोकों में मंदोदरी माता ने भगवान की श्रेष्ठता को प्रदर्शित किया है। ब्रह्मा जी ने आपको मनुष्य और वानर छोड़कर किसी के द्वारा आप पराजित या मृत्यु को प्राप्त नहीं हो गए ऐसा वर दिया है, और सामान्य मनुष्य तो आपको छू भी नहीं सकता। फिर ये जो राम जो आप इस यहां पर प्रकट हुआ है मनुष्य के रूप में, जिसने आपको मारा है, वास्तव में वो कौन है, इसका परिचय इन चार श्लोकों में देती है। निश्चय ही ये श्री रामचंद्र जी महान योगी एवं सनातन परमात्मा है, इनका आदि मध्य और अंत नहीं है, ये महान से भी महान अज्ञान अंधकार से परे तथा सबको धारण करने वाले परमेश्वर है, जो अपने हाथों में शंख चक्र गदा धारण करते हैं, जिनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है, भगवती लक्ष्मी जिनका कभी साथ नहीं छोड़ती, जिन्हें परास करना सर्वथा असंभव है, तथा जो नित्य स्थिर एवं संपूर्ण लोकों के अधीश्वर है, उन सत्य पराक्रमी भगवान श्री विष्णु ने ही समस्त लोकों का हित करने की इच्छा से मनुष्य का रूप धारण करके वानर रूप में प्रकट हुए संपूर्ण देवताओं के साथ आकर राक्षसों सहित आपका वध किया है, क्योंकि आप देव लोकों के शत्रु और समस्त संसार के लिए भयंकर थे। तो शुरुआत के श्लोकों में रावण की जो धारणा थी कि भगवान श्री रामचंद्र या सारी वानर सेना सामान्य तुच्छ है, तो उलाना देते हैं, कहते कि तुम समझते थे कि ये वानर या मनुष्य सामान्य है, फिर इन्होंने तुमको कैसे मार दिया। तुम समझते कि वन गोचर है, सामान्य पशु के भांति है, तो इन्होंने तुमको कैसे मार दिया। जिस लंका में तुम रहते थे वहां पर कोई मनुष्य पशु नहीं पहुंच सकता था, वे तुम्हारे घर में घुसकर तुमको मारते हैं। इसका अर्थ क्या है? राम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो इन चार श्लोकों में समझाते कि राम साक्षात परम परमेश्वर है, उनका आदि मध्य और अंत नहीं है, अनंत ऐसे भगवान है। और इस धरातल पर वे क्यों प्रकट हुए हैं? समस्त लोगों के उद्धार के लिए, समस्त जीवों के उद्धार के लिए, और सबको तुम्हारे प्रताड़ना से बचाने के लिए और तुम्हें मारने के लिए स्वयं विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार धारण किया है। और सारे देवता वानरों के रूप में प्रकट होकर तुम्हारी सारी राक्षस सेना को मार दिया है। और बहुत ही सुंदरता से यहां पर कहती है कि हे नाथ, पहले आप, ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, 15वां श्लोक जो है, इंद्रियाणि पुरा जित्वा जित्वम त्रिभुवनम त्वया स्मरद्भिरिवं तत् वैरिणीम इंद्रियैव निर्जितः। राम पहले इतना जय क्यों हुआ? जब रावण को वरदान प्राप्त होते हैं तो वरदान प्राप्त होने के पश्चात वो इतना घमंडी और शक्तिशाली बन जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी सारे देवताओं की उत्पत्ति के कारण है। और ऐसे ब्रह्मा जी ने जब किसी वसुर को, राक्षस को वरदान प्रदान किया हो तो देवता भी वहां पर निष्प्रभ हो जाते हैं। जब तक उसके पास तप था, साधना थी, कहते कि भले कोई असुर हो, राक्षस हो, किसी प्रकार का व्यक्ति हो, अगर उसे श्रेष्ठ वरदान प्राप्त करना है तो अपने इंद्रियों को निग्रहित करना पड़ता है, क्षमा तपस तपस्वचम आर्जवम। तो भले बड़े बड़े राक्षस असुर जो तीनों गुण से प्रभावित रहते थे, लेकिन जब तपस्या करने जाते थे तो अपने तपस्या के लिए, वरदान प्राप्त करने के लिए, ब्रह्मा जी हो या शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, वे बहुत ही कठोर तप करते थे, अपने इंद्रियों का निग्रह करते थे, किसी प्रकार का भोग विलास में लिप्त नहीं होते थे जब तक उनका ध्येय वरदान प्राप्त नहीं हो जाता है। तो मंदोदरी कहते हैं यहां पर, नाथ पहले आपने अपनी इंद्रियों को जीत कर ही तीनों लोकों पर विजय पाई थी। उस वैर को याद रखती हुई सी इंद्रियों ने ही आप सब आपको परास्त किया है, क्योंकि रावण ने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, तपस्या की, और इस तपस्या के कारण, इंद्रिय विजय होने के कारण ब्रह्मा जी ने उनको वरदान प्रदान किया। मंदोदरी यहां पर उन इंद्रियों को रावण के शत्रु बताती है कि तुमने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी ना, तो इन इंद्रियों ने ध्यान में रखा, कभी ना कभी हम तुम्हें परास्त करेंगे। और आज वही इंद्रियों ने उस बात को ध्यान में रखते हुए कि रावण ने हमको पराजित किया है, इसको भी हम एक ना एक दिन पराजित करेंगे, और आज इन्हीं इंद्रियों ने तुमको पराजित कर दिया है। तो कैसे रावण पराजित होता है? जिस व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं है लेकिन शक्ति है, धन है, ऐसा व्यक्ति अपने धन और शक्ति का बहुत ही गलत प्रयोग करता है। रावण और खास करके जो राक्षस असुरों को जब वरदान प्राप्त होता है तो बड़े घमंडी और उस धन का बहुत गलत उपयोग करते हैं। आप सभी को उदाहरण पता होगा कि जितने भी सारे असुर हो चुके हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी शक्तियां, बड़े बड़े वरदान प्राप्त हुए थे, कुछ दिनों के पश्चात उसका गलत उपयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। तो रावण को जब शक्तियां प्राप्त हुई, उसी क्षण से उसने सारे लोगों को, सारे देवताओं को जीतना प्रारंभ कर लिया। और जब सब कुछ सभी चीजों पर उसे जीत प्राप्त कर ली, विजय प्राप्त कर लिया, अभी दूसरा कार्य क्या है? भोग में लगना। और जब वो भोग विलास में लग जाता है तो सारी इंद्रियां खुली हो जाती है। तो इस प्रकार से जब इंद्रियों को इंद्रिय विषय दिखने लग जाता है तो सारी इंद्रियां इंद्रिय भोग में लग जाती है। तो रावण काम का प्रतीक है, तो जब उसने जहां जहां पर जाता था वहां वहां सारी सुंदर सुंदर स्त्रियों को, अप्सराओं को उठाकर अपने महल में रख देता था। कहते कि त्रिभुवन में जितनी भी सारी सुंदरियां थी, देवलोकों की, यक्षलोक में, गंधर्व में, विद्याधरों में, मनुष्य लोकों में, नागलोकों में, राक्षसों की या फिर असुरों की जितनी भी सुंदर स्त्रियां होती थी सबको उठाकर अपने महल में लेकर आता था। क्यों? भोग विलास के लिए। और उस राज्य में जितना भी सुख ऐश्वर्य होता था सब कुछ धन ऐश्वर्य छीन कर उसकी सोने की लंका ऐसे ही बनी थी। पहले तो लंका कुबेर की थी, उसको उसने जबरदस्ती छीन लिया, पुष्पक भी छीन लिया और कुबेर को भगा दिया। मतलब अपने स्वयं के पसीने की कमाई से उसने कुछ भी कमाया नहीं था, सब चुरा चुरा कर किसी को मतलब लूट कर। तो इस प्रकार से इकट्ठा करता गया और अंत में और जहां पर भी जाता था अत्याचार करता था। तो लूट के साथ साथ शाप भी अपने साथ लेकर आता था। तो ऐसा रावण जो है अपनी इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त की थी, आज वही इंद्रियां जब इंद्रिय भोग में लग गई उसके विनाश का कारण बनने लगी। और इंद्रिय भोग की परिसीमा क्या थी? जब माता सीता का उसने हरण किया था। आगे कई सारे श्लोक है, अभी हमें इस श्लोक को चर्चा करके विराम दूंगा मैं। परंतु रावण ने जब सीता माता का हरण करने की चेष्टा की तब भी मंदोदरी उसकी बहुत ही कड़े कठोर शब्द में उसकी प्रताड़ना करती है। मतलब वहां पर कहती कि आप इतने त्रिभुवन प्रतापी राजा हो, आपने कोई भी युद्ध या कोई भी संपत्ति चुरा करने लाई है और आज इतने शक्तिशाली मतलब पूरे त्रिभुवन में आप शक्तिशाली राजा हो, आज सीता का हरण आपने कैसे किया है जब उसका पति वहां पर नहीं था? तो ये बहुत ही लज्जा की बात है। जब इंद्रियों का पतन होने लग जाता है, व्यक्ति की सारे सद्गुणों का ह्रास होते जाता है और व्यक्ति भोग विलास में लग जाता है तो इस प्रकार उसका अधपतन होते जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इंद्रिय निग्रही होता है, भले सामने कितना भी ढेर सारा सोना पड़ा हो, भोग की वस्तुएं पड़ी हो, हाथ नहीं लगाएगा। रावण जिस भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति इंद्रिय भोग में लगा है, और कई ऐसी संस्थाएं भी जो इस प्रकार से कहती हैं कि जितना अधिक से अधिक भोग कर लो, जब इंद्रियां शांत हो जाएंगी तो आप विरक्त हो जाओगे। परंतु इंद्रियां किस प्रकार से है? आग के समान है और विषय क्या है? तेल के समान। जितना आप डालते जाओगे ये इंद्रिय भोग और बढ़ते जाएगा। तो रावण का इंद्रिय भोग इस प्रकार से बढ़ रहा था और परिसीमा क्या थी? माता सीता का हरण करना। और यही इंद्रियों का पतन जो है, यहां पर मंदोदरी कहती कि रावण तुम्हारे विनाश का कारण बना। मैंने तुम्हें कहा था कि सीता को छोड़ दो, ये तुम्हारे तुम यहां पर अपने भोग के लिए नहीं लाए उसको, बल्कि ये तुम्हें विनाश के लिए यहां पर लाई है। तो अपने साथ भोग नहीं लाए हो, अपने साथ विनाश लेकर आए हो। अगर तुम चाहते कि तुम इसी प्रकार से जो पहले भोग कर रहे थे उसी प्रकार से भोग करने में करने की अगर तुम्हारी इच्छा है तो सीता को लौटा दो। परंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश काल बहुत निकट होता है तो व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती। जो भी लोग उसको उपदेश देते हैं उपदेश की ओर अनदेखापन कर देता है। तो माता मंदोदरी जो जो भी शिक्षा यहां पर दे रही है, तो ये शिक्षा हमें वास्तव में हमारी इंद्रियां भी रावण के समान ही है जो कभी सुनती नहीं है। परंतु अगर हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि हे श्री राम, आप तो सभी प्रकार के सद्गुण के भंडार हो, आनंद के भंडार हो, अगर आप हमें आपके चरणों का आश्रय देंगे तो हमारी इंद्रियां भी जो आपकी ही संपत्ति है वो नियंत्रित हो सकती है और हम आपकी सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो किसी कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।